दिन भर 5 सितंबर गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भेजे जाएंगे तिहाड़ जेल। कश्मीर में संचार साधनों पर पाबंदियों का एक महीना पूरा, सुनिएगा विशेष रिपोर्ट।
इंटीग्रेशन अगर वो कहते हैं कि एक भारत को हम बनाएंगे तो वो तो दिलों के साथ होना चाहिए।
मलेशियाई पीएम के सामने मोदी ने उठाया जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मसला।
जहां तक जाकिर नाइक की बात है, जी हां, प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाई है।
और एनआरसी से बाहर 19 लाख लोगों के लिए क्या है आगे का रास्ता?
इतना रुपया नहीं है, हम लोग का भी क्या करेगा, हम लोग का मरने के अलावा कुछ नहीं है। अभी अब सब में हम लोग का भी मरना पड़ेगा।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी और भी खबरें होंगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। आईएनएक्स मीडिया मामले में अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जमानत अर्जी को खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिया, अब चिदंबरम को तिहाड़ जाना होगा। उन्होंने मांग की थी कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए जेल अधिकारियों को उनकी सुरक्षा के निर्देश दिए जाएं। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और जिसके बाद अब तक वो 15 दिन हिरासत में बिता चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने अचानक मंत्री पद छोड़ने की घोषणा की है। जो जॉनसन ने कहा है कि हाल के दिनों में वो पारिवारिक वफादारी और राष्ट्रीय हित के बीच पिस रहे थे। इस बीच मध्यावधि चुनाव को लेकर संसद में तीखी बहस चल रही है। सांसदों ने प्रधानमंत्री की चुनाव कराने की योजना को रोक दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के विपक्ष से हाथ मिला लेने के बाद बोरिस जॉनसन की सरकार अल्पमत में आ गई थी। बोरिस जॉनसन ने चुनाव में बाधा डालने पर लेबर पार्टी के विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिन की कड़ी आलोचना की है।
48 hours ago he was leading the chants of stop the coup, let the people vote. Now he's saying stop the election.
48 घंटे पहले तक वो शोर मचा रहे थे कि तख्ता पलट को रोको, जनता को वोट करने दो। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव रोको और लोगों को वोट देने से रोको। मुझे लगता है कि हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में चुनाव के आमंत्रण को खारिज करने वाले वो पहले नेता हैं। ये थे बोरिस जॉनसन के शब्द। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने धमकी दी है कि अगर उत्तरी सीरिया में एक सुरक्षित जोन बनाने की उनकी योजना को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला तो वो यूरोप को जाने वाले प्रवासियों के रूट को फिर से खोल देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उन 35 लाख सीरियाई शरणार्थियों में से 10 लाख को उस सुरक्षित जोन में बसाना चाहती है जो तुर्की में शरण लिए हुए हैं।
böyle bir güvenli bölgede gelin dedik. Buralarda bizler Türkiye'de çadır kentler var.
हम कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा सुरक्षित जोन बनाना चाहिए कि हम तुर्की में टेंट सिटी की जगह वहां हम घर बना सकें, वहां घर बनाया जाए और उन लोगों को सुरक्षित जोन में ले जाया जाए। अगर हम ये करने में सफल हुए तो तुर्की भी राहत महसूस करेगा। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन की एक अदालत ने मलेशियाई विमान MH17 के क्रैश मामले के मुख्य गवाह को छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि रूस के साथ कैदियों की अदला बदली के तहत ये रिहाई हुई है। व्लादिमीर सेमांग को रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाके से गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना में भीषण चक्रवाती तूफान डोरियन के और मजबूत होने की चेतावनी जारी की है। दक्षिणी कैरोलिना के कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस इलाके में हजारों घरों में बिजली गुल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर और दबाव बनाने का आह्वान किया है। इस मुद्दे पर समर्थन पाने के लिए वो ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की है। उधर ईरान ने कहा है कि अमरीकी प्रतिबंधों के जवाब में परमाणु समझौते की किन शर्तों पर वो अलग हो रहा है इसकी पूरी जानकारी शनिवार को देगा। यूरोपीय संघ ने परमाणु समझौते से अलग न होने की ईरान से अपील की है। अफगानी अधिकारियों का कहना है कि काबुल में एक कार बम धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नासर रहीमी ने कहा है कि सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले दूतावास इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसके निशाने पर विदेशी सुरक्षा बल थे। उधर गृह युद्ध को खत्म करने के लिए अमरीका और तालिबान के बीच वार्ता जारी है। भारत सरकार ने कार निर्माताओं को आश्वासन दिया है कि वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगाएगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कम उत्सर्जन वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स कम करने के बारे में विचार हो रहा है। भारत सरकार के एक थिंक टैंक ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का सुझाव दिया था, जिसके बाद पहले से ही सुस्ती झेल रहे कार उद्योग में घबराहट फैल गई है। बड़े वाहन निर्माताओं ने अपने उत्पादन को कम कर दिया है और हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि उसने अगस्त में अपनी गाड़ियों के उत्पादन में 50% की कमी की। चीन और अमेरिका अक्टूबर से द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के सामानों पर जवाबी शुल्क लगाए थे। उसके बाद से ये पहली बैठक होगी जिसमें दोनों देशों के अधिकारी आमने सामने वार्ता करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि यमन में युद्ध को खत्म कराने के लिए अमरीकी हुती विद्रोहियों से वार्ता चला रहा है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। बीते 15 दिनों से सीबीआई की हिरासत में रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत ने अब तिहाड़ जेल भेज दिया है। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं मोहनलाल शर्मा।
कुलदीप, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय पी चिदंबरम को तिहाड़ ले जाया जा रहा है और बस अब से चंद मिनट बाद वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। दरअसल आज ये जो मामला है ये आईएनएक्स मीडिया का मामला था, जिसमें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष चिदंबरम ने एक याचिका दाखिल करके मांग की थी कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए उन्हें जेल अधिकारियों को कहा जाए, निर्देश दिया जाए कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने एक और मांग की कि उन्हें एक अलग सेल में रखा जाए जहां वेस्टर्न टॉयलेट और जो पलंग है उसकी सुविधा हो। तो विशेष अदालत ने इसे स्वीकार किया और कहा कि पी चिदंबरम को एक अलग सेल में रखा जाएगा जहां, क्योंकि उन्हें जेड सिक्योरिटी मिली है इसलिए उन जेल में सुरक्षा के उनके पुख्ता प्रबंध होंगे। ये जो स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने आदेश दिया, इससे पहले काफ़ी तर्क हुए और पी चिदंबरम की ओर से जो वकील पेश हुए कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने आज तक किसी भी एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई आरोप नहीं लगा है आरोपी के खिलाफ। ये डॉक्यूमेंट का पूरा केस है, ऐसे में अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है। लेकिन जो सीबीआई की ओर से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने का डर है। तो ये जो मामला है ये मामला आईएनएक्स मीडिया का मामला था जिसमें कि उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन आज एक दूसरा मामला भी अदालत के सामने आया दिल्ली की अदालत में, जो कि एयरसेल मैक्सिस का मामला था। एयरसेल मैक्सिस के मामले में दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे जो कीर्ति चिदंबरम है,
कार्ति चिदंबरम हैं,
उनको अग्रिम जमानत दे दी। विशेष जज ओपी सैनी ने राहत देते हुए उन्हें मामलों की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। अदालत का कहना था कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जा सकता है। और बुधवार को ही, यानी कि आज ही, चिदंबरम का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। इस मामले में, आईएनएक्स मीडिया के मामले में, उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर जो मामला है वो दो मामले एक साथ चल रहे हैं।
एक मामले में जेल मिली, एक मामले में बेल।
बेल नहीं उसको कहेंगे क्योंकि वो खुद ही जेल में हैं, तो उनसे लेकिन पूछताछ की अनुमति जरूर मिल गई।
चलिए, बहुत शुक्रिया मोहनलाल शर्मा का जानकारी के लिए। भारत प्रशासित कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने को आज ठीक एक महीना पूरा हो गया। साथ ही एक महीना उन पाबंदियों को भी हो गया जो वहां मोबाइल, इंटरनेट और दूसरे संचार साधनों पर लगी हैं। इस पर एक विशेष रिपोर्ट आपको कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे, लेकिन पहले वहां का ताज़ा हाल सुनिए। बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से संपर्क किया और पूछा कि वहाँ संचार साधनों का अभी क्या हाल है।
कम्युनिकेशन ब्लॉकेड तो अभी भी है, लेकिन जो लैंडलाइन का मसला है वो किसी हद तक हल हो गया। श्रीनगर की हम अगर बात करें और यहाँ आज श्रीनगर की बात करें और जो लीडरान जिनको गिरफ्तार किया गया था उनमें से अभी तक किसी को नहीं छोड़ा गया, चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं चाहे वो मेन स्ट्रीम के हैं, और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं चाहे, लेकिन ऑफिशल्स ने उन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं की और नहीं उस पर कभी लबकुशाई की कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। तो लेकिन जो हमने पिछले एक महीने में रिपोर्टिंग की कश्मीर में, तो उससे ज़रूर मालूम हुआ कि कई सारे लोगों को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया गया और लोगों में अभी भी एक खौफ है जो गया नहीं है, जो पहले दिन से जो लोगों में एक खौफ था।
हाँ, ये जो खौफ की बात आप कर रहे हैं माजिद साहब, जो टेलीफोन लाइन अगर दुरुस्त हो गई हैं, रिस्टोर कर दी गई हैं, उनसे क्या असर पड़ेगा कम्युनिकेशन में? क्योंकि राज्यपाल वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेट का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल वो चरमपंथी तत्व करते हैं। क्या अब टेलीफोन लाइन रेस्टोर हो गई है? क्यों सुरक्षा बलों को या एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का खदशा है, ख़तरा है कि इस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल अब वो तत्व फिर से करेंगे?
देखिए, कुछ दिन पहले, बिल्कुल ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और कुछ दिन पहले सिक्योरिटी के कुछ टॉप ऑफिशियल से ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बातचीत हुई थी इसी मुद्दे को लेकर के, या जो प्रदर्शन कश्मीर में बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रदर्शन नहीं हुए, और हमने एक अधिकारी से ये सवाल किया ऑफ द रिकॉर्ड, उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हमारी हुई और हमने कहा कि क्या अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कश्मीर में विरोध प्रदर्शन होंगे या वायलेंस होंगे? तो उनका ये कहना था कि ये तो हम शुरू से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हम फेज़ वाइज इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे हमने लैंडलाइन को आहिस्ता आहिस्ता करना बहाल करना शुरू किया तो उसी तरीके से हम मोबाइल और इंटरनेट का जो अभी सिलसिला है बंद पड़ा है तो उसको भी हम देख रहे हैं कि लोगों के मूड के ऊपर डिपेंड हैं।
कल ये खबर आई थी कि सौरा इलाके में एक किशोर 17-18 साल के लड़के की मृत्यु हो गई, जिनको भर्ती कराया गया था अस्पताल में करीब 20-25 दिन पहले, तो आज उनके घर के आसपास आप जा पाए? क्या स्थिति थी, डाउनटाउन की क्या स्थिति थी, कुछ पता चला?
बिल्कुल, कल बीबीसी की एक हमारी टीम वहां जरूर गई थी, उनके वालिद से बात की थी और आज हमने डाउनटाउन का, पूरे डाउनटाउन का दौरा किया। मैं खुद गया था डाउनटाउन हालत देखने के लिए कि डाउनटाउन में कैसे हालात है इस डेथ के बाद। उनके घर हम नहीं गए लेकिन जो डाउनटाउन का माहौल था, काफ़ी संख्या में जगह जगह सुरक्षा बल तैनात थे और लेकिन उतनी बंदिशें नहीं थी डाउनटाउन में जितनी आम दिनों में या पिछले दिनों में हुआ करती थी।
माजिद जहांगीर से बात कर रहे थे राजेश जोशी। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने का एक महीना पूरा होने पर जुबैर अहमद की विशेष रिपोर्ट कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद को श्रीनगर में महीने भर से नज़रबंद अपनी मां से मिलने की इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुफ्ती परिवार के कुछ लोग पहले भी महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर चुके हैं और इल्तिजा चाहती तो जिलाधिकारी से इजाज़त लेकर मिलने जा सकती थी, लेकिन इल्तिजा जावेद का आरोप है कि मीडिया में साक्षात्कार देने के बाद से उन्हें भी नज़रबंद जैसी ही स्थिति में रख दिया गया था। अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की, सुनिए।
जो भी अभी कश्मीर में पिछले एक महीने से हो रहा है गैर कानूनी तरीके से करा जा रहा है, जैसे मुझे इलीगली इनने घर पे रखा, मुझे थ्रेटन किया गया, मुझे इंटिमिडेट किया गया, उसका ऑर्डर तक मेरे पास नहीं आया। एंड में मैंने बहुत सारी दरखास्त लिखी कि मैं, हमारी फैमिली महबूबा जी से मिलना चाहती है। 21st को सबसे पहला रिटन कम्युनिकेशन गया, उससे पहले हर रोज लगभग हम कहते थे ओरली कि हम मिलना चाहते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने ऐसे बिल्कुल साइड स्टेप करके डिसाइड कर दिया है कि हमें कुछ रिस्पांस नहीं आया उनसे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कोर्ट के पास चली जाती हूँ, बिकॉज मेरा अभी भी हमारी जुडिशरी में फेथ है एंड आई एम ग्लैड कि जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उससे मुझे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। आज फिफ्थ के बाद जब मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए, मुझे पता चला गया कि मुझे भी अब महबूबा जी की कैटेगरी में रखा गया है, डिटेन किया गया है। जो घर पे मेरे से लोग मिलने आते थे उनको अंदर नहीं आने दिया गया था और मुझे कहा गया था कि ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि मैंने अपनी आवाज उठाई। तो फिर मुझे धमकी की गई कि आप डिसाइड कर लो कि आपको घर पे बैठना है या आपको मीडिया से बात करते रहना है।
जब आप कश्मीर में थी, अभी आप कश्मीर में नहीं है, अभी आप चेन्नई में शायद, तो जब आप कश्मीर में थी तो क्या आपको अपने घर से निकलने पर भी पाबंदियां थी, नहीं निकलने दिया जा रहा था?
कश्मीर में मुझे बिल्कुल घर से नहीं निकलने दिया गया है। अब अगर ये लोग कहते हैं कि मुझे नहीं रखा गया था तो प्लीज इनको बोले कि सीसीटीवी फुटेज निकाल दें। उसमें हर रोज मेरा होता था सुबह के 11 बजे, शाम के 5 बजे जाके गार्ड से लड़ना, मुझे घर से निकलने दो, मुझे घर से निकलने नहीं दिया जाता था, हमारे गेट पे अंदर इनने बड़े बड़े ताले लगा दिए थे। मेरी कोर्ट से ये दरखास्त थी, अगर आप कह रहे हैं कि बाहर कर्फ्यू नहीं है तो आप किस बुनियाद पे मुझे घर पे रोक रहे हैं। वैसे तो 3 हफ्ते तक मैं चिल्लाती रही, चीखती रही कि मुझे इनसे मिलने दिया जाए, महबूबा जी से, तब नहीं माना। आप तभी मान ले जब मैं क्यों मीडिया के पास जाऊँ, मेरे हक है कि आप।
तो ये दो मांगे आपकी थी, तो उस पर कोर्ट ने दोनों मांगों पर अलग अलग क्या कहा ये बता दीजिए।
कोर्ट ने ये कहा है कि मैं अपनी मदर से मिल सकती हूँ, मैं महबूबा जी से मिल सकती हूँ, उनसे प्राइवेट में बात कर सकती हूँ, और मेरे पे कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं जा सकती हूँ, उससे पहले मुझे फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन लेनी है सिविल अथॉरिटीज से, तो उसके बाद मैं कर सकती हूँ। मैं अभी तक कश्मीर वापस इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे पता था मैं फिर से जाऊंगी, लोग मुझे फिर से इलीगली डिटेन कर देंगे। मैं एज अ डॉटर जा रही हूँ उनको ये तसल्ली देने के लिए कि बाहर हम सब ठीक हैं, और जस्ट टू सपोर्ट हर, यू नो।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद। और अब बात पाकिस्तान की, जहां सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अहमद अल जुबैर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद पहुंचे हैं, और पाकिस्तान सुरक्षा बल के मीडिया विंग ISPR ने यह दावा किया है कि इन दोनों मंत्रियों ने भारत प्रशासित कश्मीर में पैदा हुई स्थिति के हल के लिए पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की BBC उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूखी से।
पाकिस्तानी सरकार का ये कहना है कि इन दोनों लोगों का यहाँ पे आना इस बात का बताता है कि कश्मीर के मुद्दे पर ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे और उनको वहाँ का एक सिविल अवार्ड भी मिला था, तो पाकिस्तान में बहुत सी इस तरह की बातें हो रही थी कि सऊदी और UAE की जो गवर्नमेंट्स हैं वो शायद इंडियन जो स्टांस है कश्मीर पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के बैकग्राउंड में लगता है कि ये विजिट, क्योंकि सऊदी और UAE की जो गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसी को शायद जांचने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए ये विजिट किया गया है। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन लग यही रहा है कि वो कोई अच्छी अच्छी बातें करेंगे और शायद इस तरह से ये तासुर देने की कोशिश करें कि ये दोनों गवर्नमेंट जो हैं ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मुश्किल बहुत हो जाएगा इनके लिए किसी भी तरह की पोजीशन ऐसी लेना जो कि वो पहले इंडिया की सपोर्ट में ले चुके हैं उसके खिलाफ।
जी, एक ISPR का स्टेटमेंट हम यहाँ मीडिया में पढ़ रहे थे, जो कहा गया है कि कमर बाजवा से मुलाकात के बाद दोनों मंत्रियों ने कहा है कि वो फुल सपोर्ट, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पूर्ण सहयोग देंगे कश्मीर मसले पर।
देखिए, अभी तक कोई उनकी तरफ से, सऊदी की तरफ से या जो उनके डेलीगेशन है उनकी तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। ये अभी तक पाकिस्तानी स्टेटमेंट है, और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी इस तरह की बात की है कि वो हमारे स्टांस को इस पे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये उसी वक्त कंफर्म होगा जब उनके डेलीगेशन की तरफ से या उन मंत्रियों की तरफ से कोई बात सामने आएगी।
जी, और क्या इस तरह से भी देखा जा रहा है वहाँ पे कि एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, क्योंकि सऊदी अरब और UAE या और भी जो बाकी इस्लामी देश हैं उनका जो रवैया था, जो रुख था, वो बताया जाता है कि पाकिस्तान उससे पहले बहुत खुश नहीं था।
जी देखिए, जो UAE और सऊदी गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में अपने पब्लिक ओपिनियन के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, उन्हें इस बात की बहुत परवाह होती है कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो सऊदी रूलिंग फैमिली को खास तौर पे किस तरह देखते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है, तो उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव है। और वो ये इस तरह का इम्प्रेशन, आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे इस तरह का इम्प्रेशन पाया जा रहा था जब खासतौर पे जब इंडियन प्रधानमंत्री को वहाँ पे सिविल अवार्ड दिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन काफी नेगेटिव हो रहा था, तो उसी को ये शायद बेहतर बनाने के लिए इन मंत्रियों का पाकिस्तान आए हैं। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये अभी शाम तक, रात में जब उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उसका क्या रिजल्ट निकला है।
जानकारी दे रहे थे BBC उर्दू संवाददाता आसिफ फारूखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस में हैं, और वहां मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात में उन्होंने विवादित इस्लामी धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मसला उठाया। भारतीय नागरिक जाकिर नाइक बीते कुछ साल से मलेशिया में हैं। टेलीविज़न पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले जाकिर नाइक पर हवाला और मजहबी नफरतों को भड़काने का आरोप है। ब्यौरा सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नायक के प्रत्यर्पण की बात मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से रूस में हुई एक मुलाकात के दौरान उठाई। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने जाकिर नायक के सिलसिले में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की पुष्टि की है।
जहां तक जाकिर नाइक की बात है, जी हां, प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाई है और हम दोनों पक्ष ने यह तय किया है कि हमारे अधिकारी इस पे संपर्क बनाए रखेंगे और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण विषय है।
नरेंद्र मोदी और महातिर मोहम्मद ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की पांचवी बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में मौजूद हैं। 53 साल के विवादित धर्म प्रचारक ने साल 2016 में भारत छोड़ दिया था और बाद में वो मलेशिया चले गए थे, जहां उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी यानी स्थायी तौर पर रहने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन बार बार विवादों में आने वाले जाकिर नायक मलेशिया में भी विवादों में घिर गए हैं। टेलीविजन पर इस्लाम का प्रचार करने वाले जाकिर नायक के कार्यक्रम बहुत पॉपुलर थे लेकिन विवादित भी।
That if Allah subhanahu wa ta'ala would have only revealed this surah alone, it would have been sufficient for hidayah.
भारतीय हुकूमत ने जाकिर नायक के खिलाफ हवाला का केस दर्ज किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। नायक इन आरोपों से इनकार करते हैं। मुंबई के डोंगरी इलाके के रहने वाले जाकिर नायक ने मेडिकल की शिक्षा हासिल की थी, लेकिन बाद में वो टेलीविजन पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे और फिर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था बना ली जो उनके सारे कारोबार की देखरेख करती थी। लेकिन NIA के छापे के बाद से संस्था के दफ्तरों पर ताले लगे हुए हैं। उनका TV चैनल पीस TV भी इन दिनों बंद है। पिछले माह जाकिर नायक ने अपनी एक स्पीच के दौरान मलेशिया में रहने वाले हिंदुओं को नरेंद्र मोदी के प्रति अधिक वफादारी रखने वाला और वहां के चीनी लोगों को मेहमान बता दिया था। हालांकि नायक ने बाद में अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन मुस्लिम बहुल मलेशिया ने उनके भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया है और मुल्क के कई हिस्सों से उनके परमानेंट रेजिडेंसी को रद्द करने की मांग उठने लगी है। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
भारत में 54 साल तक फंसे रहने के बाद 2017 में आखिरकार चीन पहुंचने वाले पूर्व चीनी सैनिक वांग छी को अब भारत आने के लिए वीज़ा मिल गया है। उन्होंने अप्रैल में भारतीय वीज़ा के लिए आवेदन किया था ताकि वो भारत में अपने परिवार से मिल सकें। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
वांग छी के बेटे विष्णु ने BBC से बातचीत में बताया कि उनके पिता को 2 सितंबर 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक का 6 महीने का मल्टी एंट्री वीजा मिला है। विष्णु कहते हैं,
अभी जो है उनको थोड़ी देर पहले ही मिला है वीजा, यहाँ पे आधा घंटा पहले हाथ में आया है उनके पासपोर्ट और पासपोर्ट में जो वीजा रहता है वो वीजा वहाँ पे बीजिंग एम्बेसी वालों ने, इंडियन एम्बेसी वालों ने उनको भेजा है, यहाँ पे दिया है, तो उनके हाथ में अभी पहुंचा है। उनसे मेरी बात भी पापा से, पापा को भी बहुत खुशी हो रही है और मेरे को भी जो है बहुत खुशी हो रही है कि उनको जितने जल्दी से जल्दी हो गया वीजा मिल गया है, 2 दिन के अंदर उनको वीजा हाथ में आ गया है। सरकार से यही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया गवर्नमेंट से कि भाई इनको ये 6 महीने का दिया है, पहले 1 साल का दिया जाता था, अब ये 6 महीने का कर दिया है इनको, कम से कम इनको 5 साल का वीजा एक साथ दिया जाए ताकि ये बार बार जो बीजिंग आना जाना करते ये ना हो पाए इनसे। पापा भी सियांग में है, वहाँ पे उनको बाय पोस्ट हाथ में आया है वीजा।
हमने वांगछी से उनका रिएक्शन जानने के लिए चीन फोन किया तो उनके मुंह से हिंदी की बजाय चीनी भाषा ही निकल रही थी। आखिरकार उनके बेटे विष्णु ने बताया कि उनके पिता वांगछी का कहना है कि वो अपने परिवार के बारे में चिंतित थे लेकिन अब वीजा मिलने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है।
6 महीने से उनको टेंशन फिकर थी बोल रहे हैं वो, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा। मतलब और वो जो वीजा के लिए जो 6 महीने का दिया हुआ है वो बोल रहे हैं कि बोले मैं जब दिल्ली आऊंगा तो इंडिया गवर्नमेंट में वहाँ पे फिर जाके उनको वीजा के लिए फिर बोलूंगा कि भाई ये 6 महीने का मेरे को क्यों दिया गया है, 6 महीने से तो बढ़ाओ करके यहीं पे ऐसा।
वांगछी अपने भारतीय परिवार से मिलने भारत आना चाहते थे लेकिन 4 महीनों से ज्यादा इंतजार के बाद भी उन्हें बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास से वीजा नहीं मिल पा रहा था। उनके बेटे, 2 बेटियां, पोता पोती मध्य प्रदेश के तिरोड़ी में रहते हैं। साल 2017 में उनके चीन जाने के कुछ महीने बाद ही उनकी पत्नी सुशीला की मौत हो गई थी। चीन से भारत आने के लिए वीजा पाने की कोशिश कर रहे वांगछी का कहना था कि दूतावास की ओर से उन्हें साफ जवाब नहीं मिल पा रहा था जिस कारण वो गुस्से में थे। अब उनके परिवार का कहना है कि वीजा मिलने के बाद अब वो वांगछी के लिए टिकटें बुक कर रहे हैं। वांगछी के मुताबिक साल 1963 में वो गलती से भारत में घुस गए थे और पकड़े गए थे। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक वो भारत में बिना कागजात के घुसे। करीब 54 साल भारत में बिताने के बाद साल 2017 में वो चीन अपने घर जा पाए थे। उनका परिवार शांगसी राज्य के शियानयांग इलाके में है। वांगची विभिन्न जेलों में 6 से 7 साल रहे, उसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के एक गांव तिरोड़ी में छोड़ दिया गया। वांगची ने वहां एक आटे की चक्की में काम करना शुरू किया। उन्होंने सुशीला से शादी की, वहीं उनके बच्चे हुए। 80 के दशक में पहली बार पत्रों के माध्यम से चीन में परिवार के साथ उनका संपर्क हुआ। 40 साल में पहली बार साल 2002 में फोन पर उनकी बात उनकी माँ से हुई। साल 2006 में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बीबीसी में कहानी छपने के बाद भारत और चीन की मीडिया में से लेकर भारी प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों में बातचीत हुई। वांगची को कुछ समय पहले ही चीन का पासपोर्ट मिला था। वांगची के परिवार के मुताबिक वो बेटे विष्णु, विष्णु की पत्नी और बेटी के साथ चीन जा पाए और उन्हें भारत आने का 1 साल का मल्टी एंट्री वीजा मिला। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
नेपाल के कुछ सीमावर्ती इलाके, खासतौर से नेपालगंज, इस वक्त आवारा पशुओं की समस्या का सामना कर रहे हैं। वहां लोगों का कहना है कि ये समस्या इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि भारतीय किसान बड़े पैमाने पर बूढ़े गाय बैलों को नेपाल की ओर हांक रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की नेपालगंज में मौजूद हमारी सहयोगी बिमला चौधरी से।
इस समस्या कृषि में आधुनिकता आने की वजह से यहाँ के किसान भी पशुओं को स्वतंत्र छोड़ देते हैं और भारत से भी खुले सीमा की वजह से वहाँ के भी पशु निर्बाध रूप में नेपालगंज प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब दर्द के कारण बना है।
क्या हमारे पास कोई ऐसी संख्या है कि नेपालगंज में पशुओं की संख्या, गायों की संख्या कितनी हो गई है?
नेपालगंज में नियंत्रण करके रखा गायों को संख्या 400 से ज्यादा है और सड़क में लावारिस गायों को संख्या 1000 से ज्यादा है।
तो इस पे क्या नेपाल के स्थानीय अधिकारी क्या भारतीय अधिकारियों से बात करने वाले हैं? कुछ प्रशासनिक स्तर पे ऐसा कुछ होने वाला है कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत होने वाली?
बात तो अभी नहीं हुआ है, जानकारी नहीं आया है बात करने के। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भारतीय पक्ष से स्वतंत्र गायों के विषय में भारतीय पक्ष से बातचीत करने की जानकारी दी है, इसका जल्द ही समाधान होगा, प्रमुख जिला अधिकारी कुमार बहादुर खड़का ने विश्वास व्यक्त किया है।
और वहाँ नेपालगंज में सड़कों की स्थिति कैसी है, थोड़ा ये बताइए कि सड़कों पर क्या खूब सारी गायें टहलती घूमती हुई दिख रही हैं?
सड़क में लावारिस गायों रात के समय में ज्यादा देखता है, इसलिए सवारी साधन आवागमन में बहुत समस्या है। दिन में चरने के लिए बाहर जाते हैं ना, वो रात में सड़क में आकर बस बैठते हैं।
ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर नेपालगंज में आवारा पशुओं की और गायों की भी संख्या बढ़ी है तो वे सब भारत से ही आई है, भारत से ही हाकी गई है?
अब नेपाल की स्थानीय गाय नियंत्रण करके रखते हैं तो दूसरा दिन फिर से उतना ही गाय शहर में देखते हैं। नेपाल के सीमा सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी खटा गए हैं तो वो लोग बताते हैं भारत से ज्यादा नेपाल आ रहे हैं। वो सुरक्षा कर्मियों ने इतने संख्या में गाय भारत में ही पठाते हैं तो फिर भी वहाँ से खुला नाका के कौन कौन नाका से नेपाल फिर जाते हैं गाय।
नेपालगंज से जानकारी दे रही थी बिमला चौधरी। नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के पारित होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोतरी की गई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया है। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। इसका कारण है कि यातायात पुलिस ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। मोटर व्हीकल्स संशोधन एक्ट 2019 के पारित होने के बाद सड़क पर ट्रैफिक के उल्लंघन के दंड के पैसों की रकम बढ़ा दी गई है और अब पुलिस द्वारा किए गए चालानों की झड़ी सी लग गई है। बढ़े हुए जुर्माने के सबसे पहले पीड़ित दिल्ली के वसुंधरा में रहने वाले दिनेश मदान बने, जिनको ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया गया।
तो इसमें तो परेशानी ही परेशानी है सर। छाना सर कोई अच्छे काम में छाए होते तो ठीक है, ये एक लापरवाही टाइप है कि जो मेरी गाड़ी में नहीं मेरे घर पे थे। अगर रानू मंडल की तरह छाता कोई अच्छी आवाज होती तो ठीक है, समझ आता कि सलमान सर से मिलने का मौका मिलता।
संसद के मानसून सत्र में ही मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया जो 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया, जिसमें यातायात उल्लंघन के जुर्माने को कई गुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे लागू नहीं किया है। इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। लेकिन दिल्ली में वाहन चलाने वाले बढ़ी हुई जुर्माने की रकम को अलग अलग नजरिए से देखते हैं।
ट्रैफिक रूल्स तोड़ते थे पहले और उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी क्योंकि हमारे में डर बना रहेगा कि हमें पेनल्टी पे करनी है। 100 की जगह 1000 रुपीज़ हो गया, 500 की जगह 10000 रुपीज़ हो गया, तो मुझे लग रहा है अच्छा है जी।
अगर मान लो गलती हो भी गई 5000 रुपये कौन देगा? ड्राइवर आदमी कहाँ 10000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, 5000 रुपये तो चला ना बुक।
मतलब मैं खुश हूँ कि लोग एटलीस्ट सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। इस एक तरह से लिंक है कि मतलब वो फाइन देना तो एटलीस्ट नहीं चाहेंगे, तो वो थोड़ा सोच समझ के गाड़ी चलाएंगे और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो भी लेंगे, जो रेगुलेशन है वो फॉलो करेंगे। मेनली जो है लोगों को ये होना चाहिए, उनके माइंड में ये होना चाहिए कि ये नहीं देखना चाहिए कि कितना जुर्माना लगेगा क्या होगा, उनको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का देखना चाहिए कि अगर हम हेलमेट लगा रहे हैं तो हम अपनी लाइफ के लिए लगा रहे हैं।
ऑटो वाला गरीब होते हैं, वो कार वाला बड़े लोग हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं लगेंगे, चाहे वो जहाँ खड़ा कर दे। डर लगेंगे आप ट्रैफिक वाले के जाने में, लेकिन हम लोग तो गरीब लोग हैं, वो हाथ भी चला सकता है, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है।
चूंकि ये संशोधन संसद से पारित हुआ है और इस पर भारत के राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, इसलिए राज्यों पर इसे लागू करना बाध्यता है। सलमान रावी, BBC।
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक घंटे का दिन भर और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। आने वाले 30 मिनट में हम आपको और खबरें और आवाज़ें सुनाएंगे। असम से NRC की आखिरी सूची आने के बाद क्या माहौल है, इस पर एक विशेष रिपोर्ट होगी। उसी प्रदेश से एक डॉक्टर की भीड़ की ओर से पीट पीट कर हत्या पर एक रिपोर्ट होगी और आपकी चिट्ठियाँ तो आज होती ही हैं, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार। INX मीडिया मामले में अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए CBI ने यह आदेश दिया। अब चिदंबरम को तिहाड़ जाना होगा। CBI ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब तक वो 15 दिन की हिरासत बिता चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने अचानक मंत्री पद छोड़ने की घोषणा की है। जो जॉनसन ने कहा है कि हाल के दिनों में वो पारिवारिक वफादारी और राष्ट्रीय हित के बीच पिस रहे थे। इस बीच मध्यावधि चुनाव को लेकर संसद में तीखी बहस चल रही है। सांसदों ने प्रधानमंत्री की पहले चुनाव कराने की योजना को रोक दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने धमकी दी है कि अगर उत्तरी सीरिया में एक सुरक्षित जोन बनाने की उनकी योजना को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला तो वो यूरोप को जाने वाले प्रवासियों के रूट को फिर से खोल देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उन 35 लाख सीरियाई शरणार्थियों में से 10 लाख को उस सुरक्षित जोन में बसाना चाहती है। यूक्रेन की एक अदालत ने मलेशियाई विमान MH17 के क्रैश मामले के मुख्य गवाह को छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि रूस के साथ कैदियों की अदला बदली के तहत ये रिहाई हुई है। व्लादिमीर सेमांक को रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके से गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना में भीषण चक्रवाती तूफान डोरियन के और मजबूत होने की चेतावनी जारी की है। दक्षिणी कैरोलिना के चार्ल्सटन शहर पहले ही बाढ़ के प्रभाव से ग्रस्त है। इस इलाके में हजारों घरों में बिजली गुल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर और दबाव बनाने का आह्वान किया है। उधर ईरान ने कहा है कि अमरीकी प्रतिबंधों के जवाब में परमाणु समझौते की किन शर्तों पर वो अलग हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी वो शनिवार को देगा। यूरोपीय संघ ने परमाणु समझौते से अलग न होने की ईरान से अपील की है। अफगानी अधिकारियों का कहना है कि काबुल में एक कार बम धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नासरत रहीमी ने कहा है कि सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले दूतावास इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत सरकार ने कार निर्माताओं को आश्वासन दिया है कि वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगाएगी। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं एक घंटे का कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त हुए आज एक महीना हो गया। देश में आम धारणा यह है कि इससे कश्मीर का मुद्दा हल हो गया, लेकिन क्या 70 साल से ज़्यादा समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान हो गया है? खासतौर से एक ऐसा मुद्दा जिससे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी जुड़ा है। इसका जवाब टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता जुबैर अहमद ने, जो हाल ही में कश्मीर घाटी से लौटे हैं।
मैं संकल्प करता हूँ कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत
5 अगस्त 2019 यानी आज से ठीक एक महीना पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म करने की घोषणा की अचानक किए गए इस फैसले पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने कुछ यूं कहा,
तो इस स्टेट को अगर किसी ने बांध के रखा था तो आर्टिकल 370 ने रखा था। आर्टिकल 370 में तीनों रीजन और सभी धर्मों के सभी कल्चर से संबंध रखने वाले लोगों के लिए प्रावधान थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झटके में तीन चार चीजों को खत्म कर दिया।
भारत सरकार के इस फैसले के बाद देश में ये धारणा बनी कि कश्मीर का मुद्दा हल हो गया है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर घाटी में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं घटी, जिसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वहां की जनता ने भारत सरकार के फैसले का कड़ा विरोध नहीं किया। लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों में इस फैसले पर सख्त नाराजगी है। सरकार के फैसले के कुछ दिनों बाद मुझे श्रीनगर के कुछ युवाओं ने इस ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी।
कश्मीरी लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती तो इतनी फौज लाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने फौज लाई है, ज़बरदस्ती हमसे की है,
अंदर से लोगों के अंदर मतलब भरा हुआ है। जो ही लोगों को मौका मिलेगा ये उबल पड़ेगा।
मैं आपको कह रहा हूँ, 5 साल बाद यही 370 आप देखते हैं। आई एज अ सिटीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 साल बाद भी यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि द रियल क्वेश्चन ऑफ व्हाट द पीपल वांट, द पीपल्स वॉइस इज नॉट बीइंग हर्ड।
इंटीग्रेशन अगर वो कहते हैं कि भारत को हम बनाएंगे तो वो तो दिलों के साथ होना चाहिए।
ये आवाजें कश्मीर घाटी की 70 लाख जनता की नुमाइंदगी करती हैं। घाटी में मौजूद भारत समर्थक भी इस फैसले से काफी नाराज थे और अलगाववादी लोगों ने हमें यह बताया कि कश्मीर का मसला सुलझा नहीं है बल्कि और भी उलझ गया है। उनके अनुसार उनकी लड़ाई आज़ादी की है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत सरकार का दावा कश्मीर की समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने का है। लेकिन कश्मीर घाटी से हाल में लौटे कश्मीरी पत्रकार राहुल पंडिता के विचार में भारत सरकार का फैसला कश्मीर समस्या के खत्म होने की तरफ एक पहला ठोस कदम है।
कश्मीर समस्या का अंत तो नहीं, मगर अंत की तरफ नई दिल्ली द्वारा लिया गया पहला ठोस कदम है। इससे पहले 70 साल तक आपने सब तरह की कोशिशें करके देख ली। 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ, स्पेशल स्टेटस इख्तियार हुआ, अलग झंडा, अलग संविधान, इंदिरा शेख अकॉर्ड, राजीव फारूक अकॉर्ड, वाजपेयी जी का इंसानियत जमहूरियत, मोदी मुफ्ती समझौता, मगर आपने देखा कि इन सब से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आपको बार बार ये ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि साहब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
जम्मू में आमतौर से भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। लद्दाख के लेह शहर में भी इस फैसले पर खुशी मनाई गई। कारगिल के लोग हमेशा से भारत के अंदर रहना चाहते थे, लेकिन आर्टिकल 370 के अंतर्गत मिले विशेष अधिकारों के साथ, तो वो इस फैसले से नाराज हैं। उधर पाकिस्तान की तीखी और कुछ लोगों के अनुसार बौखलाई हुई प्रतिक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में ये समझना कि कश्मीर का मसला खत्म हो गया है कितना समझदारी की बात होगी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शमशाद अहमद ने बीबीसी से बातें करते हुए कहा कि कश्मीर का मुद्दा अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर आ चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि वो दुनिया भर में कश्मीर के दूत बने रहेंगे और आखिरी दम तक उनके लिए लड़ते रहेंगे। भारत में आम राय यह है कि अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास न तो कोई ठोस विकल्प है और न ही उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल है। पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है। शमशाद अहमद कहते हैं,
हुकूमतें इस तरह बोला नहीं करती, लेकिन ये है कि इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं और इस किस्म के मसाइल होते हैं उनमें किसी भी हुकूमत के पास बिजली का बटन नहीं होता है, ना एक जादू की छड़ी होती है कि वो इशारा करेंगे और मोदी को इशारा करेंगे चलो ये करो। तो ये जो होता है ये एक प्रोसेस होता है और पाकिस्तान ने अपना सिफारती कोशिश पर सिफारती कैंपेन पूरे तरीके से जारी रखे हुए है।
शमशाद अहमद के अनुसार उनकी जानकारी के मुताबिक इमरान खान 27 सितंबर को अपने भाषण में कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अमेरिका समेत दुनिया की अधिकतर बड़ी ताकतों ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि वो कश्मीर के मुद्दे को आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लें। चीन, मलेशिया और तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। इस तरह भारत के ना चाहते हुए भी कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बनता दिखाई देता है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट से निकाले गए 19 लाख लोगों के लिए अब फॉरेन ट्राइब्यूनल में अपनी नागरिकता साबित करना अगला चरण होगा। लेकिन असम के लोगों के इन फॉरेन ट्राइब्यूनल से जुड़े पुराने अनुभव क्या रहे हैं, यहां आवेदन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी चुनौतियों पर सुनिए असम से बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की रिपोर्ट।
हम लोग अभी क्या करेगा, हम लोग का मरने के अलावा कुछ नहीं है अभी, अब सब हम लोग अभी मरना पड़ेगा।
एनआरसी की फाइनल लिस्ट मुबारक हुसैन और उनके पिता अब्दुल मजीद के लिए दुखों और निराशा का पहाड़ लेकर आई है। असम के बक्सा जिले के काटाझार गांव में रहने वाले इस परिवार के कुल 7 सदस्यों का नाम एनआरसी में रिजेक्ट कर दिया गया है। निराशा में डूबे परिवार का कहना है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल की कानूनी उलझनों में फंसने की बजाय वो अपनी जिंदगी से ही मुँह मोड़ लेंगे।
2018 में वो ड्राफ्ट में नाम आया था और इसमें 2019 में क्या क्या वो काट दिया, रिजेक्ट में डाल दिया। तो जो एनआरसी है वो तो 51 का दिया है, वो 51 का है। हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग सब एडमिट सर्टिफिकेट और सब हायर सेकेंडरी डिग्री का दिया है। जितना डॉक्यूमेंट्स है वो सब ओके है, फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो मालूम नहीं है, क्यों नहीं आया हम लोगों का ये एनआरसी में नाम। अभी तो ये बहुत बड़ा लड़ाई है, अभी जो इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो और पैसा भी बहुत चाहिए हम लोगों को, तो उतना पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। और मेरा फादर का तो उतना भी जो थोड़ा मिट्टी है उसका खेती बाड़ी करता है, उसमें हम लोगों का पेट पाल चलता है, तो उतना रुपया नहीं है। हम लोग अभी क्या करेगा, हम लोग का मरने के अलावा कुछ नहीं है अभी, अब सब हम लोग अभी मरना पड़ेगा।
कागजों पर सरकार का दावा है कि सिर्फ एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आने से ही कोई विदेशी नागरिक साबित नहीं हो जाता, फॉरेन ट्रिब्यूनल लोगों की नागरिकता पर आखिरी फैसला करेगी। लेकिन बड़ा जमीनी सवाल ये है कि पैसों की कमी, अशिक्षा और लंबे कानूनी दावपेचों से जूझते हुए आखिर कितने लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के दरवाजों तक पहुँच पाते हैं, और वो लोग जो किसी तरह ट्रिब्यूनल के दरवाजों तक पहुंचते भी हैं उनके क्या अनुभव हैं? आगे सुनिए बक्सा जिले के ही बंशीबाड़ी गांव में रहने वाली आशिया खातून को, जो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बीते 4 सालों से बरपेटा के फॉरेन ट्रिब्यूनल के चक्कर लगा रही है।
पिछले 4 साल में इस केस में मेरी मेहनत और मेरा पैसा लगा है। बिजाली कोर्ट के वकील ने ही अब तक 80-90 हजार रुपए ले लिए। इतना सब करने के बाद भी अगर फॉरेन ट्राइब्यूनल से मेरा निर्णय ठीक नहीं आया तो मुझे गुवाहाटी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। मेरे बाप दादा और मेरा सबका पर्सनल कागज ठीक है, अगर वो सब भारतीय हैं तो अकेले मैं विदेशी कैसे हो सकती हूँ?
यदि भारत नागरी तले अमर भारत ही बसतबारी अमर भारत ही टिकन नागबो।
रिपोर्ट में आगे सुनिए एक ऐसे वकील को जिन्होंने 2014 में ही फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपना मुकदमा जीतकर खुद को भारतीय नागरिक साबित कर दिया था, लेकिन 31 अगस्त को आई एनआरसी लिस्ट में उनको और उनके पूरे परिवार को रिजेक्टेड श्रेणी में डाल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से यहाँ उनकी पहचान उजागर नहीं की जा रही है।
1997 में पूरे कागज होने के बावजूद बिना किसी जांच पड़ताल के मुझे डी वोटर घोषित कर दिया गया था। फिर फॉरेन ट्राइब्यूनल में एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2014 में मुझे भारतीय नागरिक घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसके बाद एनआरसी लिस्ट में अपने आप ही मुझे भारतीय नागरिक स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन पक्के कागज होने के बाद भी एनआरसी लिस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात का मुझे गहरा सदमा लगा है। ऐसे भी कोई लोग हैं जो छोटी सी मात्रा की गलती की वजह से नागरिकता का केस हार जाते हैं। अगर एक वकील होने के बाद मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए गाँव के आम लोगों के लिए फॉरेन ट्राइब्यूनल में अपील करके केस जीतना कितना मुश्किल होगा।
ऐसी ही अपीलें दाखिल करने में लोगों की मदद कर रहे वकील मुस्तफा हुसैन फॉरेन ट्रिब्यूनल में नागरिकता का मुकदमा लड़ने की चुनौतियां गिनवाते हैं।
अभी 100 ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग और 200 फंक्शनिंग होने जा रहे हैं, मतलब 300 ट्राइब्यूनल होंगे, 120 दिन हैं और 19 लाख लोग हैं, तो 19 लाख अपील्स होंगे। ये नहीं कि पूरा फैमिली के एक साथ अपील दाखिल कर दिया, 19 लाख अपील्स होंगे। डीलिंग करने में उन लोगों का दिक्कत है और जो लोग फेस करने जाएंगे उनको तो और ज़्यादा दिक्कत होंगे, क्योंकि एंटायर एनआरसी एक्सरसाइज में स्टेप बाय स्टेप एसओपी रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा
है, इसमें एब्सेंट है,
इसमें एब्सेंट है। सिर्फ रूल में ये कहा गया कि दिस इज द प्रोसीजर टू डिस्पोज ऑफ द अपील, हाउ टू डील विद द अपील, बट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर होता है तो मुझे लगता है थोड़ा आसानी होगा।
एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिए जाने के बाद अब 19 लाख लोगों की निगाहें फॉरेन ट्रिब्यूनल्स पर टिकी हुई है, लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई के शुरुआती बिंदु पर खड़े इन लोगों के लिए भारतीय नागरिकता फिलहाल किसी सपने जितनी ही दूर है। प्रियंका दुबे, बीबीसी असम।
असम के जोरहाट के टियोक चाय बागान में बीते शनिवार को एक डॉक्टर की भीड़ की ओर से पीट पीट कर हत्या के बाद से वहां चाय बागान पर ताला जड़ दिया गया है। कथित तौर पर चाय श्रमिकों की भीड़ ने डॉक्टर देवेन दत्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से डॉक्टर की पत्नी और बच्चे सदमे में हैं। जोरहाट से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
रोने बिलखने की आवाज डॉक्टर देवेन दत्ता के घर से आ रही है। 61 साल की उनकी पत्नी अपराजिता दत्ता का रो रो कर बुरा हाल है। अपने पिता को बेस्ट फ्रेंड बताने वाली डॉक्टर दत्ता की बेटी सुमी मॉब लिंचिंग में शामिल दोषियों को कड़ी सजा दिलवाना चाहती है।
हम लोग चाहते हैं कि ये मैटर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, जल्दी से जल्दी विचार हो, जो भी अपराधी है या दोषी है, जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व है, उन लोगों को सरकार दे शुड बी हैंग टिल डेथ, मुझे इतना ही मालूम है।
आखिर उस दिन हुआ क्या था, घटना के चश्मदीद 27 साल के मनोज माझी ने बीबीसी को बताया।
तो हम लोग का पेशेंट का हालत बहुत खराब दिखाई दे रहा है, ब्लड भी ब्लीडिंग हो रहा है ब्रेन से, जेने मैम ने सलाइन वलाइन ठीक दे रहा था और इंजेक्शन भी दिया था, उसका बाद ऑक्सीजन लगाया था डॉक्टर ने, मतलब सांसें भी नहीं ले रहा है, डॉक्टर लोग बोल रहे जिंदा है जिंदा है, तो मर जाने के बाद भी ऑक्सीजन लगाया था। हम लोग तो उसको कुछ भी नहीं किया, उसको सेफ्टी करने के लिए हम लोग खुद, हमको पिटाई मिला है पब्लिक का पूरा वीडियो आप लोग जितना नोटिस में वीडियो निकला हुआ है अभी न्यूज़ चैनल में अब देखिए, मेरा वीडियो आप, मैनेजर को भी मारपीट कर रहा था और डॉक्टर को भी कर रहा था।
असम के चाय बागानों में इस तरह के हमले का ये पहला मामला नहीं है। साल 2012 में तिनसुकिया जिले के बोरदुमसा चाय बागान के मालिक मृदुल कुमार भट्टाचार्य और उनकी पत्नी को उनके ही बंगले में जिंदा जला दिया था। इसके अलावा बीते मई महीने में डिब्रूगढ़ जिले के डीकम चाय बागान में भीड़ ने डॉक्टर प्रवीण ठाकुर को भी इतनी ही बेरहमी से पीटा था। डॉक्टर ठाकुर हमले वाले दिन को याद कर आज भी डर जाते हैं।
मुझे अभी ऐसा लगा मैं किए क्यों ऐसी हमें हो, मेरा फैमिली डर में रहता है, मुझे डर में रहना पड़ता है, कोई कौन वक्त में क्या हो जाएगा मुझे मालूम नहीं है। डिकम में मुझ पर जैसा हमला हुआ है मैं शुक्रगुजार हूँ, भगवान मुझे बचाया, मुझे भी ऐसा यहाँ पे जैसा हुआ वैसे ही हुआ था, मुझे मार मार के पीट पीट के ये हड्डी भी तोड़ के मुझे फेंक दिया।
असम के चाय बागानों में मजदूरों को खतरनाक और भयावह परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कई चाय बागानों में मजदूरों के घर जर्जर हालत में हैं। टॉयलेट या तो टूट गए हैं या गंदगी से भरे हुए हैं, पीने का पर्याप्त पानी तक नहीं है। चाय बागानों में जो अस्पताल हैं उनमें किसी तरह की सुविधा नहीं दिखती। पिछले 24 साल से टियोक चाय बागान में काम कर रही संगीता राजवार कहती है। चाय बागान में पत्ते तोड़ने के काम में सबसे ज्यादा तकलीफ गर्मियों में होती है। गर्मी में कई मजदूर बीमार पड़ जाते हैं, दस्त और उल्टी होने लगती है, वहाँ पीने के पानी की सुविधा भी नहीं होती। इसके बाद भी अगर अस्पताल में दवाई नहीं होगी और डॉक्टर जांच नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। ये थे संगीता राजवाड़ के शब्द। पुलिस ने अब तक इस मामले में 36 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मॉब लिंचिंग की घटना से जुड़े मामलों को अदालत में मजबूती से रखने के लिए पुलिस को पर्याप्त गवाहों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पूरी भीड़ ही अभियुक्त हो तो मामले में न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी असम।
आज है गुरुवार और आज होता है आपकी चिट्ठियों का दिन, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे के पास चिट्ठियां हैं।
जाहिर है चिट्ठियां ही लेके आएंगे आप और ईमेल्स भी हैं। हाँ। आज क्या है, मतलब आज हमारे लिए गुलदस्ते भेजे हैं हमारे हाँ। श्रोताओं ने या कुछ और... कुछ कुछ कांटे भी हैं उनमें?
कांटे तो हैं कुछ, लेकिन गुलदस्ते में एक गुलाब का फूल सबसे ज्यादा महक रहा है और ये कविता का की शक्ल में भेजा है।
अरे वाह, किन्होंने भेजा है?
ये हरि बिलास सिंह ने भेजा है और ये जिला मुरैना से मध्य प्रदेश से लिखते हैं और ये लिखते हैं कि आपकी राय में पत्रोत्तर सुनने का करता हूँ हमेशा इंतजार, किंतु होना पड़ता है हरदम बेकरार।
अरे
पत्रों को पढ़ने में हमेशा होती है कोताही, ईमेल पढ़े जाते हैं ज्यादा, उनकी चमक ऐसी है छाई।
क्या बात है।
कुछ खास श्रोताओं का ऐसा है चमत्कार, छाए रहते हैं हर कार्यक्रम में बन के सदाबहार।
अब उन सदाबहारों की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो गया। हाँ। है तोमर साहब।
और ये कहते हैं कोई कहता है मैं नियमित श्रोता हूँ, तो कोई कहता है मैं 40 साल पुराना श्रोता हूँ, अपनी अपनी सब कहते हैं लेकिन हम चुपचाप सहते हैं।
अरे नहीं साहब, आपने तो दिल जीत लिया, बिल्कुल कलेजा चाक कर दिया। तोमर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जिस भावना के साथ आपने ये चिट्ठी लिखी है और मेहनत के साथ आपने समय निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा है। आप गौर से सुनते हैं कार्यक्रम को, अगली चिट्ठी में आप कार्यक्रम के बारे में भी लिखिएगा और इसी तरह की कविताएं भेजते रहिएगा, हमें जो है बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में आपकी चिट्ठियां।
बिल्कुल। आगे बढ़े तो एहसान असगर ने लिखा है, ये बुलदाना महाराष्ट्र से लिखते हैं और ये कह रहे हैं यमन के खूनी संघर्ष पर वात्सल्य जी द्वारा की गई प्रस्तुति दुनिया जहां में काफी पसंद आई और मुझे काफी इतिहास के बारे में पता चला और अपने देश में मौजूद अपार गैस व तेल भंडार के कारण ही वहां की जनता हालत फुटबॉल की तरह हो गई है, ये उनकी अपनी राय है।
जी, उनकी अपनी राय है। वात्सल्य राय ने इस दुनिया जहान के संक में बहुत मेहनत की थी और बहुत मन लगा करके उस कार्यक्रम को बनाया था। उसको सुन करके मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत सारी जानकारियां, नई जानकारियां मुझे मिली हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आपको भी वो कार्यक्रम पसंद आया।
आगे बढ़े तो अली अकबर लिखते हैं बाड़मेर राजस्थान से, ये लिखते हैं कि मैं 11 साल से बीबीसी सुन रहा हूं और कश्मीर मुद्दे पर जो बात होती है वह हम गौर से सुनते हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।
इनका अपने अगर पूरा नाम नहीं पढ़ा है तो सूर्यांशी पढ़ दीजिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे।
ये अली अकबर बलोच।
देखिए, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैं बलोच हूँ, मतलब ये चिट्ठी मुझे याद है। तो अली अकबर बलोच साहब, आप कश्मीर का जो हमने एक घंटे का कार्यक्रम किया है, क्योंकि कश्मीर से पूरी तरह से खबरें नहीं आ पा रही थी, वहाँ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, अभी भी हैं बहुत हद तक, तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि अपने श्रोताओं तक कश्मीर का हाल भी पहुँचाएँ और कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी पहुँचाएँ। तो आधा घंटे का कार्यक्रम उसके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए आप ये आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। आपको ये पसंद आ रहा है और कश्मीर का कवरेज पसंद आ रहा है, बलोच साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
और सादिक आजमी जी जो हमेशा सऊदी अरब से लिखते थे, इस बार लिख रहे हैं कौड़िया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से,
लगता है ये घर लौट आए हैं।
और इनका ये कहना है कि घर लौटते ही मैं मुबारकपुर आजमगढ़ लौटा ही था कि यहाँ के मुख्य व्यवसाय बनारसी साड़ी के उद्योग पर मंदी की ऐसी मार देखी कि कलेजा छीण हो गया। तो मैं सोच रहा था कि मऊ और मुबारकपुर और बनारस में इस व्यवसाय को लेकर मची त्राही त्राही पर बीबीसी से आग्रह करूं कि वो कोई रिपोर्ट पेश करे। और देखिए, समीर आत्मज मिश्र जी ने मऊ पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू कराया, तो यकीन जाने बीबीसी की निष्पक्ष विचारधारा पर विश्वास और बढ़ गया है।
इसी वजह से इनका नाम आजमी है, क्योंकि आजमगढ़ के रहने वाले। अच्छा, अब पता चला। तो साहब, समीर आत्मज मिश्र ने वहां जाके जो बुनकर समाज है उनके लोगों से बात की, किस तरह से मंदी की मार उनको परेशान कर रही है, ये सामने आई बात। और मुझे अच्छा ये बात इस बात का लगा कि जब आप अपने गांव लौटे, आपको बीबीसी की याद आई कि ये खबर कम से कम बीबीसी पर आनी चाहिए।
एक सवाल जसवीर रेडाडा पूछ रहे हैं, बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं, कह रहे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के पश्चात कुछ समय तक तो जम्मू व लद्दाख क्षेत्र की रिपोर्टिंग आपने की और आपने सुनाई भी, लेकिन पिछले कुछ समय से इन क्षेत्रों से कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, तो क्या ये माने कि वहां पे जनजीवन पूर्णतया सामान्य हो गया है?
देखिए, इसमें एक हद तक सच्चाई है कि जम्मू में और लद्दाख में जनजीवन लगभग सामान्य दिख रहा है अभी तक, और हमारे संवाददाता कुलदीप मिश्र वहाँ गए थे, उन्होंने लद्दाख से ख़ास तौर पे रिपोर्टिंग की थी। अगर कुछ भी इस तरह का होगा जो खबर जिसकी बनती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, आप जानते हैं कि वो खबर आप तक पहुँचाई जाएगी।
मदनलाल लंबोरिया भिरानी से लिखते हैं, वात्सल राय ने दुनिया जहां में यमन पर जो रिपोर्ट पेश की उसमें तथ्य भी था, सटीक भी थी और ज्ञानवर्धक भी थी। और आपने जम्मू कश्मीर पर एक घंटे का कार्यक्रम जो प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार, सेना, अर्थव्यवस्था और अर्धसैनिक बलों को खलनायक के रूप में बता रहे हैं। मीडिया का काम शांति प्रयासों को बढ़ाना है, चरमपंथियों और अराजकतावादियों के हौसले बुलंद करना नहीं है।
मदन लाल लंबोरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चिट्ठी लिखी। खलनायक बीबीसी के लिए तो कम से कम कोई नहीं है, न तो सरकार है न जनता है। हमारे सिर्फ एक ही धर्म है, वो धर्म है पत्रकारिता का। और बार बार मैं अपनी इन चिट्ठियों में कहता हूँ आपकी राय में कि हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, आप अपने श्रोताओं को सटीक जानकारी मुहैया कराना और ईमानदार पत्रकारिता करना। चिट्ठियाँ अभी भी बहुत हैं और ईमेल भी हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए चलते चलते पता बता देते हैं। लिखिएगा, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो पता नोट कीजिए, hindi.letters@bbc.co.uk पर। नमस्कार।
आपकी चिट्ठियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह आपको हमारे कार्यक्रम का इंतजार रहता है, हमें भी आपकी चिट्ठियों की प्रतीक्षा रहती है। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। और आप जानते ही हैं कि प्रशंसाएं भी ठीक हैं पर आलोचनाएं भी जरूरी हैं। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है। आज अमेरिकी ओपन टेस्ट टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहले सेमीफाइनल में पांचवी वरीयता हासिल यूक्रेन की इलीना स्वीतोलिना का सामना आठवीं वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स से होगा। सेरेना विलियम्स 6 बार अमेरिकी ओपन अपने नाम कर चुकी हैं। पिछली बार वो साल 2014 में अमेरिकी ओपन का खिताब जीतने में कामयाब रही थी। दूसरी तरफ स्वीतोलिना पहली बार अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले उन्होंने इसी साल विंबलडन का सेमीफाइनल भी खेला था। इसके अलावा वो इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंची थी। जाहिर सी बात है, आज सेरेना विलियम्स के लिए स्वीतोलिना से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं आज दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिस का सामना कनाडा के लियांसा आंद्रेस्क्यू से होगा। इससे पहले कल खेले गए मुकाबलों में महिला एकल वर्ग में आंद्रेस्क्यू ने बेल्जियम की एलिसे मार्टिन्स को 3-6, 6-2, 6-3 से मात दी। लेकिन सबकी नजरें पुरुष एकल वर्ग में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर थी, जहां दूसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्समैन को 6-4, 7-5, 6-2 से हराया। पुरुषों के ही एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इटली के मैटियो बर्टेनी ने कड़े संघर्ष के बाद फ्रांस के गेल मोनफिल्स को 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 से हराया। उधर ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 285 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया को इस स्थिति में पहुंचाने का श्रेय पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को जाता है, जिन्होंने बेहद दमदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 125 रनों की शतकीय पारी खेली। उनसे पहले कल मार्नस लबुशेंग 67 रन बनाकर पेविलियन लौटे थे। इसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में आज पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट खोकर 271 रन बना लिए थे। अफगानिस्तान के रहमत शाह ने 102 रनों की शतकीय पारी खेली। खेल समाचारों में आज इतना ही।
इंग्लैंड में एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जा रहा है और इसका ताज़ा हाल अभी आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। स्टीव स्मिथ के शानदार 166 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 353 रन बना लिए हैं। स्टीव स्मिथ अब भी क्रीज पर टिके हुए हैं और दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं। इस मैच के दौरान एक दिलचस्प नज़ारा और दिखा, जब तेज़ हवाओं की वजह से कुछ देर तक मैच स्टंप्स की गिल्लियों के बिना ही खेलना पड़ा क्योंकि हवाएं इतनी तेज थी। तो कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए संदीप राय से।
बीबीसी समाचार। आईएनएक्स मीडिया मामले में अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने अचानक मंत्री पद छोड़ने की घोषणा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब अर्दोवान ने धमकी दी है कि वो यूरोप को जाने वाले प्रवासियों के रूट को फिर से खोल देंगे। यूक्रेन की एक अदालत ने मलेशियाई विमान MH17 के क्रैश मामले में मुख्य गवाह को रिहा कर दिया है। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना में भीषण चक्रवाती तूफान डोरियन के और मजबूत होने की चेतावनी जारी की है। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर और दबाव बनाने का आह्वान किया है। अफगानी अधिकारियों का कहना है कि काबुल में एक कार बम धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और 40 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत सरकार ने कार निर्माताओं को आश्वासन दिया है कि वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगाएगी। चीन और अमेरिका अक्टूबर से द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि यमन में युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका हूती विद्रोहियों के साथ वार्ता चला रहा है। 10 साल पहले एक विमान क्रैश के मामले में फ्रांस की एक अदालत ने एयर फ्रांस के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह नमस्कार भारत में होगी। समय आप जानते हैं, सुबह 6:30 बजे। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। तो अब कुलदीप मिश्र को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।